टाइटल बारे अव्वल, अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना की ये रिसाला मौसूमा अय्यामुस्सुलो मतबा ज़ियाउल इस्लाम कादियां में बेहतमाम हकीम हाफिज फजलुद्दीन साहेब भेरवी माले के मतबा के मतबू हुआ, यकम जनवरी 1899। इश्तहार आम इत्तला के लिए। अगरचे ये किताब बाज़ मुतफर्रिक मुकामात में ईसाइयों के हमलों का जवाब देती और उनको मुखातब करती है, लेकिन याद रहे कि बावजूद इस बात के कि ईसाइयों की किताब उम्महातुल मोमिनीन ने दिलों में सख्त इश्तियाल पैदा किया है, मगर फिर भी हमने इस किताब में जहाँ कहीं ईसाइयों का ज़िक्र आया है बहुत नरमी और तहज़ीब और लुत्फ़ बयान से ज़िक्र किया है, और गो ऐसी सूरत में कि दिल दुखाने वाली गालियाँ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गईं। हमारा हक था कि हम मुदाफ़ियत के तौर पर सख्ती का सख्ती से जवाब देते, लेकिन हमने महज इस हया के तकाजे से जो मोमिन की सिफत लाजमी है हर एक तलख ज़ुबानी से एराज किया और वही उमूर लिखे हैं जो मौके और महल पर चश्मा थे। और क़ता नज़र इन सब बातों के हमारी इस किताब में और रिसाला फरियाद दर्द में वो नेक चलन पादरी और दूसरे ईसाई मुखातब नहीं हैं जो अपनी शराफत ज़ाती की वजह से फजूल गोई और बदगोई से किनारा करते हैं और दिल दुखाने वाले लफ्ज़ों से हमें दुख नहीं देते और न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते और न उनकी किताबें सख्त गोई और तौहीन से भरी हुई हैं। ऐसे लोगों को बिलाशुबा हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और वो हमारी किसी तहरीर के मुखातब नहीं हैं, बल्कि सिर्फ वही लोग हमारे मुखातब हैं ख़ा वो बगुफ्तन मुसलमान कहलाते या ईसाई हैं, जो हद एतदाल से बढ़ गए और हमारी ज़ातियात पर गाली और बदगोई से हमला करते या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुजुर्ग में तौहीन और हतक आमेज़ बातें मुंह पर लाते और अपनी किताबों में शाया करते। सो हमारी इस किताब और दूसरी किताबों में कोई लफ्ज़ या कोई इशारा ऐसे मुअज्ज़िज़ लोगों की तरफ नहीं है जो बदज़बानी और कमीनगी के तरीक़ को इख्तियार नहीं करते। हम इस बात के लिए भी खुदा ताला की तरफ से मामूर हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का सच्चा और पाक और रास्तबाज नबी माने और उनकी नबूवत पर ईमान लाएं। सो हमारी किसी किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है जो उनकी शान बुजुर्ग के बरखिलाफ, और अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो धोखा खाने वाला और झूठा है। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल मुश्तहिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अज़्ज़ादियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फंदेश गोश कुन के रही अज़ाबो दर्द, फरखंदा कस के पंद खिरद मंद गोश कर्द। हमारे पहले इश्तिहार मोरखा 6 फरवरी 1898 ताउन के मुतालिक एक और ज़रूरी बयान। मुझे मालूम हुआ है कि बाद साहिबों के दिलों में मेरे अव्वल इश्तिहार के पढ़ने से ये एक एतराज़ पैदा हुआ है कि लोगों को अव्वल ये बताना कि इस मर्ज़ के इस्तीसाल के लिए फ़लाँ तदबीर या दवा है और फिर ये कहना कि शामत आमाल से ये मर्ज़ फैलती है। इन दोनों बातों में तनाकुज़ है और ताज्जुब के इस एतराज़ के करने वाले बाद मुसलमान ही हैं। सो ऐसे सब साहिबों को वाज़े रहे कि क़ानून कुदरत और सहीफ़े फितरत पर नज़र डालने से इन तमाम अवहाम का बड़ी सफाई से जवाब मिलता है। खुदा का क़ानून कुदरत जो हमारी नज़र के सामने है हमें बतला रहा है कि सिलसिला तदाबीर और मुआलजात का तलब और इस्तिदा से वाबस्ता है, यानी जब हम फ़िक्र के ज़रिए से या किसी और तरीके जस्तजू के ज़रिए से किसी तदबीर और इलाज को तलब करते हैं या अगर हम तलब करने में आसन तरीक का मलेका न रखते हों या अगर उसमें कामिल न हों, तो मसलन इस गौर और फ़िक्र के लिए किसी डॉक्टर को मुंतखब करते हैं और वो हमारे लिए अपनी फ़िक्र और गौर के वसीले से कोई आसन तरीक हमारी शिफा का सोचता है, تب اس کو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سوج جاتا ہے جو کسی درجے تک ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ در حقیقت اس خوض اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دعا کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ فکر اور غور کے وقت جب کہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اتر کر ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو ہم ایسی حالت میں بزبان حال اس اعلیٰ طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اگر جب کہ ہماری روح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدع فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجز پا کر فکر کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے، تو درحقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے، اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امر مخفی کے لیے خیال کو دوڑانا، یہ سب امور دعا ہی میں داخل ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور ان کی روح مبدع فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے، اور محجوبوں کی دعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب اسباب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ اس پر یقین ہے، وہ بھی فکر اور غور کے وسیلے سے یہی چاہتے ہیں کہ غیب سے کوئی کامیابی کی بات ان کے دل میں پڑ جائے، اور ایک عارف دعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس پر کھلے۔ لیکن محجوب جو خدا تعالیٰ سے رابطہ نہیں رکھتا، وہ مبدع فیض کو نہیں جانتا، اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی ہے، اور اسی مدد کے پانے کے لیے وہ فکر کرتا ہے، مگر عارف اس مبدا کو دیکھتا ہے اور یہ تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور خوض کے بعد دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر کو بطور دعا قرار دے کر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرنے والے کے دل میں ڈالتا ہے۔ کر جو حکمت اور معرفت کا نقطہ فکر کے ذریعے سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے، اور فکر کرنے والا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ سو آخر وہ خدا سے اس مطلب کو پاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ طریق طلب روشنی اگر علی وجہ البصیرت اور ہادی حقیقی کی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دعا ہے، اور اگر صرف فکر اور خوض کے ذریعے سے یہ روشنی لامعلوم مبدا سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ محجوبانہ دعا ہے۔